जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
पले सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करे, कभी ना किसी की बुराई करे, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
साया कहीं तो कहीं धूप है, हे नाम कितने एक रूप है, हर दिल में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम,
ओम शांति,
ओम शांति। डॉक्टर प्रेम मसंत, एमडी रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, आज हमारे मध्य हैं। आदरणीय भ्राता जी का हम स्वागत करते हैं। आपका परिचय में तो बहुत सी बातें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ ही कुछ में से बातें कि किस तरह से एक मैजिकल पर्सनल होते हुए ज्ञान को आपने स्पिरिचुअल नॉलेज को किस तरह से अपने जीवन में उसका अभ्यास किया और आज एक वो बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है कि किस तरह से हम अपने थिंकिंग के बेसिस पर रिलेशंस को पॉजिटिव बना सकते हैं। इसीलिए इनका एक विशेष टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। आपने आज तक 8000 से भी ज्यादा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कॉर्पोरेट सेक्टर्स जैसे हमारे सामने है अदानी पोर्ट ट्रस्ट, हिंदुस्तान मोटर्स, L&T, इस तरह की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर्स लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SBI, नाबार्ड, RBI, शिवराम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कैट, इंदौर एंड सिमिलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक एम्स, IIM कैलिकेट, IIT रुड़की एंड सो मेनी अदर हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। वहां आपने प्रेजेंटेशन दी है और कुछ एक आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं लाइक लीडरशिप स्किल्स, लिव लाइफ लाइट, इमोशनल मास्टरी ओवर फियर, एंगर, डिप्रेशन एंड ईगो एंड मैनी मोर टॉपिक्स। मैं तो यही कहूंगी कि आप प्रोफेशनल डॉक्टर से भी ज्यादा एक स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं, जो आप लोगों को नेगेटिविटी से कैसे हम उसको ओवरकम करें, कैसे अपने आप को हील करें, उस पर आप विशेष उनको सहयोग देते हैं और उनको इस बात में गाइडलाइन देते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर प्रेम भाई जी को अनुरोध करती हूं कि आज इस विषय पर हमें अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रेम वसंत जी,
गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है बर्डन्स। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर, अपने अपने एनवायरमेंट के अनुसार, अपने अपने फीडिंग के अनुसार अपने प्रेशर लेता है। हरेक का प्रेशर लेने का तरीका अपना अपना है। कोई प्रेशर को रिजॉल्व कर देता है, कोई लेकर घूमता है, और ये हर आत्मा का अपना अपना एक मेथडोलॉजी रहता है। जो मैंने सीखा, क्योंकि मेरा फील्ड है कैंसर का, और उन लोगों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूं और स्पिरिचुअल नॉलेज जो मिला, दोनों को ब्लाइंड करके मैंने देखा, एक ह्यूमन नेचर यूनिक है और उस यूनिक नेचर को अगर हम समझ लेते हैं तो अपने प्रॉब्लम को, लोड को कम कर सकते हैं। अब जनरली तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल बिंदास चलते हैं, दे गो ऑन। एक होते हैं थोड़ा बहुत लेते रहते हैं। तीसरा है हमेशा ही लेते रहते हैं। उनका मैकेनिज्म ये रहता है, जब तक चिंता नहीं करो, जब तक लोड नहीं लो, तब तक अच्छा नहीं लगता। तो हरेक के नेचर अपने अपने रहते हैं। एक स्टोरी से शुरू करते हैं कि कैसे लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा लोड देता है। एक्सपेक्टेशन भी तीन तरह के होते हैं, एक खुद से, एक दूसरों से, और तीसरा दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तीन तरह के एक्सपेक्टेशन रहते हैं। ज्यादातर तो हमारे खुद के रहते हैं, और अगर मेरा खुद का बिल्डअप कमजोर है तो दूसरे भी प्रेशर करते रहते हैं। एक दो मॉन्क, जैन मॉन्क जा रहे हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक यंग लेडी खड़ी हुई है, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, वो क्रॉस करना चाहती है रिवर पर कर नहीं पा रही है क्योंकि शी इज वेयरिंग ब्यूटिफुल ड्रेस। तो सीनियर मॉन्क ने उसको अपने कंधे पे बिठा दिया और नदी क्रॉस करा दी। फिर दोनों चलने लगे। यंग मॉन्क बहुत गुस्से में था अंदर ही अंदर, इसने कैसे किया सीनियर मॉन्क ने, हमारे इसमें तो है ही नहीं कि हम किसी को टच करें, और इसने कैसे कर लिया। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। जब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर आए, उससे रहा नहीं गया और सीनियर मॉन्क को बोला, तुमने ऐसा क्या क्यों किया, उसको अपने कंधों पर बिठा दिया। तो सीनियर मॉन्क बोलता है, आई लेफ्ट हर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, मैंने उसको नदी किनारे छोड़ा है, पर तू तो अभी भी उसको लेकर चल रहा है। इसी तरीके से हम भी अपने लाइफ में कई अनवांटेड लेकर चलते रहते हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है ईगल। ईगल की नॉर्मल लाइफ स्पान है 70 इयर्स, पर यहां तक पहुंचने के लिए उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर 70 ईयर तक पहुंचना है, जब ईगल की एज 40 होती है तो उसके तीन मेजर पार्ट हैं, टैलोन, बीक, विंग्स, तीनों खराब होना शुरू होते हैं। पहले टैलोन खराब होना शुरू होता है, फिर बीक बेंट होना शुरू होती है, फिर उसके विंग्स फीदर्स हेवी हो जाते हैं। इसके कारण ईगल अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है। अब ईगल के पास केवल दो ऑप्शन रहते हैं, या तो खत्म हो जाए या एक चेंज प्रोसेस से जाए जिसमें 150 डेज लगते हैं, ऑलमोस्ट 5 मंथ, और इसके लिए ईगल को एक पहाड़ी पर जाना पड़ता है और घोंसला बनाकर वहां रहता है। और पहला काम करता है, ईगल अपने बीक को बेंट बीक को पत्थर के उससे तोड़ता है, तोड़ने के बाद नई बीक आ जाती है, फिर ईगल अपने टैलोन्स को निकालता है और फिर नए टैलोन्स आ जाते हैं, फिर ईगल अपने विंग्स को निकालता है और नए विंग्स आ जाते हैं, और फिर ईगल एक नई उड़ान के लिए 30 इयर्स के लिए एक नया ईगल उड़ता है। अब इस स्टोरी में क्या मैसेज है, व्हाट इज द मैसेज इन दिस स्टोरी। अब आप आइए बोलिए। पहले थोड़ा अपने को एनर्जी कर लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर करें। हाँ, ब्रेकफास्ट करके आए ना, थोड़ा हेवी हो गए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाएं, दोनों हाथ स्ट्रेच करें, गुड। तो क्या था स्टोरी का मैसेज? चेंज। पहला है, एवरीवन हैज टू अंडरगो चेंज, चाहे ह्यूमन बीइंग है चाहे एनिमल है, चेंज जरूरी है. सेकंड, सेकंड ओके, हाँ, यू हैव टू टेक द पेन फॉर द चेंज. देयर इज नो गेम विदाउट पेन. रिजुविनेशन हम लोग भी करते हैं ना, हमारा वेट बढ़ जाता है तो जाते हैं नेचुरोपैथी करते हैं, वेट कम कराते हैं, फिर से साल भर की क्लीनिंग कराते हैं, एक वीक रहकर डिटॉक्सिफाई कराते हैं, फिर चल पड़ते हैं. फिर हर साल आजकल जरूरी हो गया डिटॉक्सिफाई कराना, क्योंकि ह्यूमन बींग हैवी हो गया है. उनको तो एक बार ही लगता है, हमें शायद बार बार लगता है. और बर्डन, मेन थ्योरी क्या है, टॉपिक क्या है, बर्डन. हमें अपने बर्डन्स को छोड़ना पड़ेगा. अगर बर्डन हम लेकर चलेंगे तो बर्डन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज आ रहा है मेडिकल साइंस में. हार्ट डिजीज के बाद हर महीने एक नया हॉस्पिटल खुलता है बाईपास का और नी रिप्लेसमेंट का. नी प्रॉब्लम इतने कॉमन हो गए हैं कि अब हॉस्पिटल कह रहा है एक सर्जरी कराओ तो दूसरी फ्री कर देंगे, पैकेज आ गया है. नी का प्रॉब्लम 2000 के बाद बढ़ा है, 2000 के पहले नहीं था इतना. व्हाई इट इज कॉमन नाउ? Because our burden is becoming more and more, and that burden is shifted to our knee. Knee absorber है. अगर पूरा burden यहां है तो यहां आएगा ही आएगा और यहां आएगा. Back pain, spondylitis, and knee problem आएगा ही आएगा. इसीलिए हमें past को छोड़ना पड़ता है, past को भुलाना पड़ता है, तभी हम प्रेजेंट को कैश कर सकते हैं. अगर हमारे को पास्ट का डर है, पास्ट का गिल्ट है, पास्ट का एंगर है, फ्यूचर का फियर है, तो प्रेजेंट को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे. हमें प्रेजेंट को एंजॉय करना है तो दोनों को हमें थोड़ी देर के लिए डिलीट करना पड़ेगा, कि फियर का डर, फ्यूचर का डर ना आए. पास्ट में जो हुआ उससे मुझे सीखना है, पास्ट में जो मिस्टेक हुई उससे सीख कर मैं आगे बढ़ूं और उसको प्रेजेंट में यूटिलाइज करूं. और हर किसी से कहीं ना कहीं मिस्टेक होती रहती है, उसका हम गिल्ट ना लें. एक्सपेक्टेशन से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है व्यक्ति को, अगर मेरा एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा है, सेल्फ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो मेरे में दो चीजें आ जाएगी, गिल्ट और शेम और डिप्रेशन. एंड दैट इज व्हाई डिप्रेशन इज बिकमिंग वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. I will say, in coming time, depression will be the major killer in the society if we will not remove our negative burdens. और उसी के कारण व्यक्ति की खुशी गायब हो रही है, और जब खुशी गायब हो रही है तो depression common होता है. इसीलिए एक ने कहा, in the end, क्या चीज चाहिए? हमने कितना प्यार किया, कितना जिंदा रहे और कितना जाने दिया, लेट गो किया. अगर लेट गो करना नहीं आता है 21st सेंचुरी में, तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, क्योंकि हर लेवल पे चाहे ऑफिस में, चाहे घर पर, चाहे सिचुएशन में, चाहे रोड पर, कुछ ना कुछ होता है। एक इंसिडेंट याद आया, दिल्ली में दो लोग कार पार्क कर रहे थे पार्किंग लॉट में, दोनों का झगड़ा हो गया पार्किंग में। एक ने दूसरे को कार से निकाला और कार चला दी, दूसरे की डेथ हुई और एक को पुलिस ने अरेस्ट किया। अब आप देखो, एक सेकंड में दो इंटेलिजेंट पर्सन, दोनों इंटेलिजेंट थे, एक मिनट में चेंज हो गया गेम। क्यों हुआ, क्यों हुआ? पार्किंग इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां क्या आ गया, लेट गो नहीं किया। और लेट गो कर देता, चलो वो कार पार्क कर रहा है, मैं कहीं और देख लेता हूं, तो दोनों की जिंदगी बच जाती है। अब हम सभी में बर्डन क्यों आते हैं, ये बंद करना, बर्डन क्यों आते हैं? अब हरेक के अलग अलग कारण है, रीजंस हैं। पहला है लो सेल्फ स्टीम, मेरा खुद का ही वैल्यू सिस्टम लो है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट मैं खुद को दे सकता हूं वो कौन सा है? पूरी साइकोथेरेपी उस पर डिपेंड है। आई एम नॉट गुड, आई कैन नॉट डू, मैं ठीक नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता। और एक बार ये आ गया तो फिर दूसरे भी प्रेशर करेंगे और उसका भी प्रेशर आएगा, और इसी के कारण मेजॉरिटी सुसाइड यंगस्टर्स में होते हैं। उनको कह दिया, टॉलरेट नहीं कर पाए। इवन अच्छे शोज में मैंने देखा, लड़का या लड़की शो में गए, वहां जजिस ने कह दिया, थोड़ा नेगेटिव रिमार्क दे दिया और सुसाइड कर लिया। क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेंसिटिव नेचर हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग वेरी सेंसिटिव। थोड़ा बोला खट, इसीलिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, हमारे बच्चों को, कि वो स्ट्रांग बने और नेगेटिव टीम से बचे। टीम मींस थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज, ये चार हमारे सॉफ्टवेयर हैं। टीम इज माय सॉफ्टवेयर, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड्स, मेमोरी। सॉफ्टवेयर कमजोर है तो हार्डवेयर भी कमजोर होगा। बॉडी इज आवर हार्डवेयर, बॉडी में जो भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं टीम फ्लक्चुएट कर रही है और इसका असर हार्ट पर, पैनक्रियास पर, एड्रिनल पर सीधा आता है। और विदाउट, अगर हम नेगेटिव टीम को रिएक्ट करते रहते हैं तो हमारा एड्रिनल बहुत रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट करता है तो बॉडी में डैमेज होता है। अभी ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में एक मदर बच्चा थे, बच्चा ने फोन आया, बच्चे ने फोन उठा लिया, बात करने लगा, मदर उसको 5 मिनट तक डांटने लगी, तूने फोन क्यों उठाया, तुझे मालूम नहीं रोमिंग चार्ज लगेगा, तू कर उसको। अब मैं सोच रहा था, जब फोन है, फोन लिया है, थोड़ा बहुत खर्चा आ रहा है तो आए। अब वो मदर ने क्या किया, 10 मिनट तक उसको डांटती रही, 10 मिनट मदर ने क्या किया, एड्रिनल छोड़ा। अब वो 10 मिनट एड्रिनल बॉडी में जाएगा और डैमेज करेगा और बाद में डॉक्टर को 1 लाख 2 लाख देना पड़ेगा। इससे अच्छा रोमिंग आने देते, 5 रुपए भी होने देते तो ठीक हो जाता और 1.5 लाख रुपए बच जाते। तो हम अनवांटेड कहीं ना कहीं नेगेटिव रिएक्ट करते हैं और उसके कारण ये आता है। होल्डिंग नेचर, हम लोगों का नेचर जरा पकड़ने वाला ज्यादा है, हमें अच्छा लगता है हम पकड़ के रहें, और जितना पकड़ेंगे उतना यहां होल्ड होगा। इसीलिए दिवाली में क्या करते हैं, दिवाली में पहले दिन क्लीनिंग करते हैं, जो भी पुराना सामान है यूज नहीं कर रहे हैं बाहर करते हैं। जूते भी बाहर क्यों उतार के आते हैं मंदिर में, बाहर उतारते हैं फिर भगवान से मिलने जाते हैं, क्यों जूते पहन के क्यों नहीं जाते, एक गंदगी होती। दूसरा, जब हम जूते उतारते हैं अपनी नेगेटिविटी बर्डन को वहां छोड़ के आते हैं, फिर अंदर आएंगे तो ये खाली रहेगा कंप्यूटर, तब भगवान देगा। अगर मैं भर के यहां आऊं बैठ जाऊं भगवान को कहूं 1 करोड़ दे दे, कहेगा ले, पर जाएगा ही नहीं क्योंकि ये तो भरा हुआ है। मुझे याद आया गौतम बुद्धा का, गौतम बुद्धा हर दिन एक जगह कथा करते थे, राजा भी आता था बैठता था। कथा के बाद राजा गौतम बुद्धा को कहता था कुछ ज्ञान दो, गौतम बुद्धा उसको इग्नोर करता था। 7 दिन हो गए, 7वें दिन आया, 7वें दिन इग्नोर किया, 8वें दिन राजा ने अपनी ड्रेस पहन के आया राजा की, उसको लगा गौतम बुद्धा को पता नहीं मैं राजा हूं, राजा जैसा बैठा, फिर आया फिर इग्नोर किया। राजा ने कहा आप मेरे महल में आइए, गौतम बुद्धा ने कहा हम महल के अंदर नहीं आते हैं, मैं आऊंगा पर बाहर ही रहूंगा। गौतम बुद्धा ने अपना करमंडल लिया, उसमें आधा गोबर भर दिया और लेकर गए। राजा ने कहा आज पूर्णिमा है, खीर बनी है, आप लीजिए। गौतम बुद्धा ने अपना करमंडल दे दिया। राजा ने कहा इसमें तो गोबर भरा है, इसमें कैसे जाएगा खीर। गौतम बुद्धा ने कहा वही तो तेरे को बता रहा था, तेरे अंदर ये जो पूरा भरा हुआ था राजा का वो मैं निकालना चाहता था, तब ज्ञान जाएगा तेरे अंदर। तो बीच बीच में हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल मेरे पास आया, जाने के पहले श्री सत्य साई बाबा ने बहुत अच्छा एक आर्टिकल दिया, क्वेश्चन आंसर का था। जर्नलिस्ट ने पूछा ये सब क्यों हो रहा है, दुख अशांति, लोग सब कुछ हैं पर दुखी हैं, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम सभी के अंदर एक लाइट आ रही है और रोटेशन चल रहा है, और उस रोटेशन के कारण सोलर में चेंज आ रहा है, और एंट्रोपी लेवल अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तो बढ़ रही है, पर ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हम सभी के अंदर आ रहे हैं और उसके कारण हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं प्यूरिटी क्या है, और अगर नहीं समझेंगे तो हमारे में प्रॉब्लम आएंगे, पर अगर हम अपने वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे तो वही चीज हमें बहुत अच्छा फायदा देगी। और आने वाला समय है ही वाइब्रेशन का, जिसका वाइब्रेशन लेवल अच्छा होगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जिसका वाइब्रेशन लेवल लो होगा वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं ऑफिस में आ रहा हूं, अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, एज अ डॉक्टर आ रहा हूं, यूं बैठा हूं, पेशेंट क्या सोचेंगे, डॉक्टर अपना प्रॉब्लम नहीं ठीक कर सकता तो मेरा क्या प्रॉब्लम ठीक करेगा। तो कैसे जाना है? जब ऑफिस जाना है एनर्जी के साथ जाना है, हर एक को करना है, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, उसमें एनर्जी पंप करना है। अगर लो एनर्जी के साथ जा रहा हूं, जैसे एक बार एक बच्चा आया, मैंने कहा पॉजिटिव सोच, सर क्या करूं, पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, आप मेरे लिए सोचो। अब ये आजकल नया लेवल आ गया है, तो पंपिंग करना आजकल बहुत जरूरी है। तो खड़े हो जाएं, पंप करें, खड़े हो जाएं। जिंदगी प्यार कर दी, जिंदगी प्यार कर दी। हाँ,
रोते भी नहीं?
अच्छा चलो, रोते हो। हाँ, अब पंप करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेच करें। गुड। चल सर, नहीं तो कोई सा गीत लगा दो, आप लगा दो मितवा वाला, लेट है तो टाइम लिमिट।
रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, ओ मुकद्दर का सिकंदर, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन टुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन टुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने
की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है खाबे बन पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा जान मन कहलाएगा जान मन कहलाएगा
बैठ तो रोज क्या करना है चार्ज करना है और अभी लेटेस्ट इन्वेंशन आया एक वीक पहले वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट इन्वेंशन डिस्कवरी आया क्या आया गॉड पार्टिकल इसका नाम दिया हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल का अर्थ है कि सब एटॉमिक पार्टिकल चार्ज करता है वेट देता है यानी हम सभी के अंदर भी वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अगर हम उसको चार्ज करेंगे तो दूसरे पार्टिकल भी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में मूव करेंगे अगर मूवमेंट ठीक नहीं है तो हमारे जो सात चक्र हैं वहां प्रॉब्लम आता है और जिस चक्र में प्रॉब्लम आता है वहां का प्रॉब्लम बाहर आता है इसीलिए कहा दिस इज का अर्थ क्या हुआ दिस इज आई एम नॉट एट ईज इसीलिए डॉक्टर ने बहुत अच्छा कहा आयुर्वेदा में कहावत है पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा तो आपकी हेल्थ अच्छी और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी पर आजकल क्या हो गया उल्टा हो गया पांव हो गए हमारे ठंडे पेट हो गया टाइट और हमारा सिर गरम हो गया है इसलिए आजकल हम लोग यहां से भाग रहे हैं और इसके कारण दिस ईज हो रहा है दिस ईज को कन्वर्ट करना है तो हमें हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना पड़ेगा इंग्लिश शब्द है इल आई एल एल इल का अर्थ हुआ आई लैक लव जब प्यार नहीं है तब प्रॉब्लम है बीमारी का पहला कारण जीन्स के म्यूटेशन का पहला कारण कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद से दुखी है इसीलिए साइकोलॉजी में दो तरह के लोग होते हैं एक खुद से लड़ते हैं एक दुनिया से लड़ते हैं। एक कहता है मैं ठीक नहीं, दूसरा कहता है दुनिया ठीक नहीं, और इसी के कारण ये कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो पहला काम हमें करना है खुद को प्यार करें। फिर से हाथ लें, राइट हैंड लें। हाँ सुरेश भाई, प्यार का नगमा, खड़े हो जाएं, फिर से खड़े हो जाएं। मैं आपको बैठने नहीं दूंगा क्योंकि अभी लेटेस्ट रिसर्च आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है WHO का। उसने कहा है हर 2 घंटे में व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। और दूसरा, हम इंडियंस को हर आधे घंटे के बाद खड़ा होना चाहिए। क्यों? हम इंडियंस में 2 प्रॉब्लम बहुत जल्दी आते हैं, हार्ट कोरोनरी ब्लॉक, स्ट्रोक, और तीसरा डायबिटीज। क्यों आते हैं मुझे नहीं मालूम जेनेटिकली, पर क्योंकि हम पकड़ते हैं और बैठ जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी को कैसा दिखाया, लक्ष्मी कैसे है, खड़ी है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम लक्ष्मी को क्या करते हैं, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो माइंड बॉडी को कहता है, जीन्स को कहता है तू भी डिपॉजिट कर। तो जीन्स गॉड पार्टिकल क्या करते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर कोरोनरी में डिपॉजिट कर देते हैं। इसीलिए डिपॉजिट नहीं होने देना है, फ्लो करने देना है। और पहला काम है खुद को प्यार करो। तो अपन राइट हैंड लेते हैं, लेफ्ट के ऊपर रखते हैं और अपने को प्यार करते हैं।
प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
पहला प्यार खुद को करें। सुबह उठकर वॉकिंग के बाद बैठ जाएं और खुद को प्यार करें। अगर कोई आपको नहीं करे, खुद तो कर सकते हैं, राइट हैंड लें, दाहिना हाथ लें और पीठ थपथपाएं। आहा ब्यूटीफुल। बॉस नहीं कर रहा है, मैंने इतना अच्छा काम किया, बात कुछ बोल नहीं रहा है, मैं तो कर सकता हूं। रात को 3 बार करिए, दिन में 10 बार करिए, जब मौका मिले करिए। मैं गारंटी देता हूं आपको स्पॉन्डोलाइटिस नहीं होगा। स्पॉन्डोलाइटिस क्यों होता है? कोई कर नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, कड़क हो गया यहां। अब मैं कह रहा हूं, आज का पहला लेसन क्या था? सुबह क्या था? नहीं नहीं, मॉर्निंग का आत्मा, आत्मा में क्या था? अच्छा, हायर लेवल बताया। और कुछ? आत्मा का अर्थ क्या हुआ? आत्मा तो सबको मालूम है, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मैं यूनिक हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, मेरे जैसा ब्यूटीफुल कलाकार दुनिया में नहीं। उसको कहते हैं आत्मा का लेसन। रोज अपने यूनिकनेस को अप्रिशिएट करो तो तब आपका चार्जिंग बड़ा रहेगा। फिर आप जब निकलेंगे घर से, ऑफिस में, घर पे वापस आ रहे हैं, घर पे वापस आ रहे हैं, अगर ऐसे आ रहे हैं, बेचारे बच्चे वेट कर रहे हैं, वाइफ वेट कर रही है, मैं ऐसे जा रहा हूं, वो भी हो जाएंगे, मैं भी जब जाऊं उनको गले लगाऊं, तब कहेंगे कि एनर्जी ऑफिस से भी आई है। इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे को होते हैं। क्यों होते हैं? संडे को रिलैक्स करके गया, फिर ट्रैफिक जाम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अंदर मैसेज जाता है मजा नहीं आ रहा है। तो कोरोनरी आर्टरी कहती है मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए उस कोरोनरी आर्टरी को बार बार कहना पड़ता है ठीक है तू, ऑल इज वेल। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा शांति का अर्थ क्या। शांति का अर्थ पहले कहते थे कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल कहते हैं शांति का अर्थ प्रॉब्लम है पर मेरे पास सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स के बीच में रहना और उसमें सॉल्यूशन निकालना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। सॉल्यूशन पहला वर्ड है 21वीं सदी का, यहां रख दो कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पर। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मुझे याद आ रहा है जापान गया था नवंबर में, वहां के पीएम ने मार्च में जो प्रॉब्लम आया उनको लास्ट ईयर, हर मिनट एक डिसीजन ले रहा था। सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, रेडिएशन प्रॉब्लम आया, पर उस प्राइम मिनिस्टर को मैंने देखा खटाखट डिसीजन डिसीजन। प्रॉब्लम कितना था पर उसका डिसीजन बहुत फास्ट और क्विक था। उसको रिजाइन भी करना पड़ा पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, आजकल भगवान को कहे भगवान प्रॉब्लम नहीं देना, प्रॉब्लम नहीं देना, भगवान भी कहता है एक्सेप्ट नहीं, सॉल्यूशन देना वो देगा। प्रॉब्लम जिंदगी की निशानी है, प्रॉब्लम ना होना मौत है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम आ रहे हैं इसका मतलब है कि भगवान को मेरे ऊपर फेथ है, कॉन्फिडेंस है। इसीलिए आज पहले हम लोग कहते थे आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। अब आजकल कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। इंडिफरेंस है, चेंज है संस्कारों में, फिर भी हम ठीक हैं। प्रॉब्लम आने का तरीका दो है, वी एक्ट विदाउट थिंकिंग एंड वी गो ऑन थिंकिंग विदाउट एक्टिंग। हम सोचते बहुत हैं और करते नहीं हैं, और या कर देते हैं और सोचते नहीं हैं। और अभी आपने देखा एक साल में कई मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि क्या किया? बोल दिया, बाद में बोला मैंने नहीं बोला था। इसीलिए आजकल क्या सिखाया जा रहा है, मैं भी जब हॉस्पिटल में एमएस था, मेरे सीनियर ने सिखाया मुझे दो चीजें याद रखना, जब कोई वीआईपी भर्ती हो, कोई पूछने आए हाउ ही इज, पहला आंसर कहना ही इज क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल, दूसरा आंसर नो रिस्पॉन्स। और आजकल सेकंड वाला पॉपुलर हो रहा है, नो रिस्पॉन्स, बच गए, क्योंकि कुछ गलत निकल गया तो प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट, अब ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, मैं क्या हूं और मैं क्या अपने को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई प्रिटेंड टू व्हाट आई एम, मैं क्या हूं और मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस दो के डिफरेंस में ही मेजर प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, हम लोग क्या करते हैं, क्या होने वाला है उस पर चिंता ज्यादा करते हैं। मैंने देखा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 7 बजे आने वाली है, 6:30 से ही लोग बार बार ट्रेन आ रही, फ्लाइट आई कि नहीं आई, अभी अनाउंस किया भी नहीं फ्लाइट का, लोग जाके खड़े हो जाते हैं। क्या है अभी, उस समय को आप एंजॉय करो, इस समय में जो है वेट कर रहा हूं ट्रेन का, बहुत अच्छा है, आएगी, रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी, मैं तब तक कुछ कर लेता हूं, बजाय बार बार डॉक्टर के यहां वेट करते हैं। मैंने सेकंड जगह देखी, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब पेशेंट डॉक्टर का वेट करता रहता है, मेरा टर्न कब आएगा, एड्रिनल गया, और जब डॉक्टर के पास जाता है उसका बीपी बढ़ा रहता है, वही बीपी 10 मिनट बाद देखे तो नॉर्मल होगा, क्यों हुआ, क्या होने वाला है उसको हमें कम करना है। इसीलिए दो फैक्टर चाहिए, अपने को एक्सेप्टेंस मींस खराब चीज अच्छे लोगों को भी होती है, पर मुझे उसको ठीक करना है। कई लोग कहते मुझे क्यों हुआ, किसी को भी कुछ हो सकता है पर मुझे उसको बाहर निकलना है। रेजिलेंस का अर्थ है जो भी सिचुएशन आई है उसको मैं समझ रहा हूं और उसका असर मैं अपने अंदर नहीं आने दे रहा हूं। ये दो फैक्टर आज बहुत जरूरी हैं, दोनों होंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। रेजिलेंस का अर्थ है मेंटली मैं स्ट्रांग हूं, बाहर इजी हूं, इलास्टिक हूं। हम लोग क्या होते हैं, मेंटली फियर रहता है, बाहर स्ट्रांग हो जाते हैं, बाहर से हम इलास्टिक हों, अंदर से स्ट्रांग हों, जिसके कारण कोई भी असर हमारे ऊपर कम आए। एक बहुत अच्छा सीईओ स्टीव जॉब, जिसको पैनक्रियाटिक कैंसर था, एप्पल कंपनी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट बॉस था, उसकी डेथ हुई, लड़ाई लड़ता रहा, ऑफिस जाता रहा, वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर इन द बॉडी, फिर भी करता रहा। जाने के पहले उसने कहा, बहुत अच्छा कहा, उसने बोला अपना काम जो कर रहे हो आप उसको प्यार से करो, लव योर जॉब, जो भी करना है उसको प्यार से करो तो उसका लोड नहीं आएगा। लोड तब आता है जब हम जो कर रहे हैं उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, एक मैकेनिक बन गए हैं, दूसरा उसने कहा हर दिन ऐसा सोचो मेरा आखिरी दिन है, जब मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं फुल तरीके से काम करूंगा। सुरेश भाई आखिरी दिन खड़े हो जाएं। पेन ड्राइव में हर दिन हमारा क्या है मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, तो हर दिन को 100% जीना है, ऐसा नहीं कि 50% 20%। हाँ
रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई।
हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो।
अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
गुड, हर दिन हमारा एनर्जी वाला हो। दूसरा, हर एक से वेल कनेक्टेड हो। कनेक्टिविटी का अर्थ है हर एक से अच्छी तरह बात करो। लोड कहां आता है? बाई है, लिफ्ट मैन है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, उन स्कूली है, उससे भी अच्छी तरह बात करो। मैंने देखा लोग ऐसी कोच में चढ़ते हैं और मैक्सिमम झगड़ा कूली से करते हैं। अरे उसको 30 रुपए देना है दे दो, पर उसका असर हमारे अंदर नहीं जाए। एक बार आ रहा था एयरपोर्ट पर, मेरे को बोला 150 रुपए लगेंगे। टैक्सी वाला बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छी बातें कर रहा था। इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन के बारे में बता रहा था, ये जीतेगा वो हारेगा। वहां पहुंचा तो बिल आया 180 रुपए। अब मैंने सोचा इससे आर्ग्यू करूं, 30 रुपए ज्यादा क्यों ले रहा है। फिर अंदर आया, फ्लाइट में जा रहा हूं, इतनी अच्छी जगह जा रहा हूं, 30 रुपए के पीछे मैं अपना मूड खराब करूं, फ्लाइट में भी मूड खराब होगा। दूसरा, इसने बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया मेरे को, इलेक्शन रिजल्ट बता दिए, तो 30 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स दे दो। तो कभी भी इन लोग ज्यादा आर्ग्यूमेंट हम ना करें। थोड़ा सफाई कम की है, हमारे यहां भी बाई आती है, एक मिनट में बाहर होती है। अगर मैं उससे झगड़ा करूं तो वो कहेगी मैं करती ही नहीं काम, जितना कर लिया बहुत अच्छा, जो होता है उसको भी कंट्रीब्यूट करता हूं, तब तो वो काम करती है मेरे लिए, तब तो मुस्कुरा के बात करेगी, काम करेगी, कहते आप देते हो बाकी दूसरे कोई देता ही नहीं है, तो देखो वो माउथ पीस है। तो जितना हम अच्छी तरह कनेक्टिविटी रहेगी, कनेक्टिविटी का अर्थ है मैनेजमेंट में MBWA, MBWA, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, टॉकिंग अराउंड, लोगों से बात करो, लोगों की सुनो। लिसनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन आर्ट गिवन बाय गॉड। जब हम सुनते हैं, बात करते हैं, लोगों का लोड कम होता है। लोड कब बढ़ता है? जब उनकी हम सुनते नहीं हैं। तो जब चांस मिले उनसे बात करो, उनसे जुड़े रहो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, घर में कैसे हैं सब, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लास्ट, लर्न टू से नो। लोड कब आता है? बहुत लोड कब आता है बहुत? जब हर एक चीज को यस यस कर देते हैं, हाँ 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 हाँ। एक बड़े सीनियर ने बताया था मुझे, जब तक आपकी जरूरत नहीं है आप वहां जाना नहीं, मना करना। जब आप नो करोगे तब बड़ा चीज आपके पास आएगी। अगर हर चीज को यस यस करोगे तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। इसीलिए लर्न टू से नो और हर दिन को एक अच्छी तरह से एंजॉय करो। नेक्स्ट है, मैं दुनिया में हूं कि दुनिया मेरे में है? आई एम इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड इज विद इन मी। अगर मैं कहूंगा मैं दुनिया में हूं, दुनिया असर करेगी। और जब मैं कहूंगा दुनिया मेरे अंदर है, मैं दुनिया पर असर डालूंगा। हर दिन मॉर्निंग को उठने पर कहिए कि मैं दुनिया मेरे अंदर है और आज के दिन मैं उसको शुभ भावना दूंगा। अब फिर खड़े हो जाएं। लेट गो का सबसे अच्छा तरीका है फॉरगिवनेस, क्षमा करो, क्षमा करो। अभी हम क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। अभी हम सबको क्षमा करेंगे जिसने भी प्रॉब्लम दिया अभी तक। यहां हम उन लोगों को क्षमा कर देंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी क्षमा कर दिया था। हाथ दोनों लें, सांस लें और छोड़ें, और मनी मन कहें मैं इन सबको सबको क्षमा करता हूं, सबको शुभ भावना देता हूं। और जब हम क्षमा कर देंगे तो बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। जिंदगी एक गीत बन जाएगा, जिंदगी एक लाइट होगा जो थीम है, हम ऊपर उड़ने लग जाएंगे। सबको क्षमा कर दिया,
प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जितना हो आंचल यहां पर उसे सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसे सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
दिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, इसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी
ओम शांति।
गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब लास्ट 10 मिनट्स। हार्ट कह रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था कमजोर फॉरगिव नहीं कर सकता। दूसरा, हार्ट कह रहा है, डियर हार्ट प्लीज स्टॉप गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, योर जॉब इज टू पंप द ब्लड। लोड कब आता है? जब हम अनवांटेड इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों की स्पेस में अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट होना ही सबसे बड़ा लोड का कारण रहता है। दूसरे के उसमें हम इन्वॉल्व न होकर हम वो करें जो मेरी ड्यूटी है। एक बहुत अच्छी छोटा सा इंसिडेंस याद आया। एक छोटी बहन ने यहां नॉलेज लिया और उसको एक चीज अच्छी लगी, नॉन जजमेंटल, कि नॉन जजमेंटल रहना है, साक्षी रहना है। तो शादी होकर घर गई, शादी होकर ससुराल गई, ससुर ने कहा कुछ कहना है आज पहला दिन है। लड़की ने कहा मैं यहां आई हूं जो जो काम कर रहा है वो करता रहे, जो झाड़ू लगा रहा है लगाता रहे, खाना बना रहा है बनाता रहे, ऑफिस जा रहा है जाता रहे, सब्जी ला रहा लाता रहे। तो ससुर ने कहा तेरा काम क्या होगा? मेरा काम केवल मेरे पति को कंट्रोल करना होगा। तो नॉन जजमेंटल का अर्थ है बिना कारण से हम दूसरों में इन्वॉल्व ना हो। माइक टाइसन और होलीफील्ड का एक बहुत अच्छा बैटल हुआ था, जिसमें माइक टाइसन ने दोनों कान उसके बाइट कर दिए थे, जिसके कारण उसको $3 million पनिशमेंट हुआ था। बाद में माइक टाइसन ने क्षमा मांग ली। विनफ्रे ओपरा के शो में 2009 में उस शो में उसने उसको माफ कर दिया। यानी फॉरगिवनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हमने कुछ करा भी उसको हम फॉरगिव करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल हथियार, अब बहुत गहरी बात पे आ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट वेपन आई लर्न इन स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि हम काम ना करें, केयर ना करें, पर जैसा बताया कि हम बिना कारण से किसी भी चीज को न पकड़ें और न उसमें इंटरफियर करें। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति है अरेबिया जाता है और दो स्पेशल बर्ड पकड़ के लाता है, दोनों बर्ड एक डाली पर हैं। राजा को गिफ्ट दिया, राजा ने दोनों बर्ड ट्रेनर को दिए कि इनको उड़ाना सिखाओ। 6 महीने बाद राजा ने पूछा क्या हुआ, ट्रेनर ने कहा एक बर्ड तो उड़ गया, उड़ना सीख गया, पर दूसरा उड़ ही नहीं रहा है। राजा ने अलग अलग ट्रेनर्स को दिया, स्पेशलिस्ट को बुलाया, पर फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर एक किसान आया, फार्मर आया, फार्मर ने कहा मैं काम कर दूंगा। फार्मर ने आकर नेक्स्ट डे बोला पक्षी उड़ना सीख गया। राजा ने कहा तूने क्या किया? फार्मर ने कहा मैंने उसकी डाल को ही काट दिया। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? सब दुख का कारण, जितने भी दुख आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उससे अटैच है। माइन्यूटली भी, माइक्रो लेवल पर भी अगर अटैच है तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसीलिए इसमें मैसेज क्या था, अगर तुझे उड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट लेवल्स को, पोजीशंस को, प्रेस्टीज को पकड़ लेते हैं, होल्ड करते हैं, और उसके कारण ही लोड बढ़ता है। जब मैंने वो कार्ड दिया तो मैं जो थीम है, हाई उड़ सकता हूं, फ्लाई कर सकता हूं, क्योंकि आत्मा का नेचुरल नेचर ही है उड़ना। मेडिटेशन ये खुद ही अंदर चलता रहता है, करना नहीं पड़ता है। अगर आत्मा को छोड़ दिया तो उड़ेगी, वो अपनी तरफ, घर की तरफ ले जाएगी। आत्मा का काम ही उड़ना, पर हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं तो दुख और तकलीफ होती है। डाल का काटना मींस उससे हमें डिटैच हो गया। और एक और डीप स्टोरी है, ये आप पकड़ लिया तो पूरा फर्स्ट लेसन क्लियर हो जाएगा। शेख फरीद बैठे हुए हैं, एक फॉलोअर आया, उसने कहा ऐसा क्यों कि बड़े बड़े जो व्यक्ति हुए हैं वो दुख होते हुए भी दुखी नहीं होते हैं, कोई उनको तकलीफ देता है फिर भी अच्छे वाइब्रेशन देते हैं, माफ कर देते हैं। शेख फरीद ने कहा अच्छा, एक पहले कच्चा नारियल लाओ। कच्चा नारियल लाए और बोला इसको तोड़ो और इसके अंदर नारियल को निकालो, गिरी को निकालो। बहुत डिफिकल्टी हुई, फिर शेख फरीद ने कहा एक पक्का नारियल लाओ और अब निकालो, तो उसमें से बहुत जल्दी निकल गया। शेख फरीद ने कहा जब हम ये क्यों हुआ पका हुआ नारियल, क्योंकि उसने कवरिंग को छोड़ दिया था और इसमें कवरिंग से वो अटैच था तो डिफिकल्टी थी, और जब इसने अपने अंदर की कवरिंग को छोड़ दिया तो बाहर आ गया। इसी को गीता में कहा गया, पूरा सार कहा गया विदेही अवस्था। जो पहला लेसन सिखाया गया आज उसका पूरा इसेंस था, जब आत्मा शरीर से अटैच होती है तो तकलीफ होती है, पर जब हम इस प्रैक्टिस में कंटिन्यूअस रहते हैं, करते रहते हैं, तो सोल के वाइब्रेशन बॉडी को तंग नहीं करते हैं, और इसी पर पूरी प्रैक्टिस सिखाई जाती है, और इसी को मेडिटेशन कहते हैं कि बार बार अपने उस अवस्था में सोल कॉन्शियस में जाना ही मेडिटेशन है। बार बार मैं अपने काम पर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, मोबाइल पे बात कर रहा हूं, पहले अपने कॉन्शियसनेस में गया, फिर पानी पिया, फिर मोबाइल पे बात की। मैंने देखा कई लोग मोबाइल पर बात करते करते ही गुस्सा आ जाते, और एक दो बार तो देखा कि एक यहां नीचे शांतिवन में बात कर रहा था, इतना गुस्से में था कि उसको एंजाइना हो गया, फटाफट उसको आईसीयू में भर्ती किया। कहां किससे बात कर रहा था मालूम नहीं, पर बात करते करते ही उसका रिएक्टिव वो था। इसीलिए यहां सिखाया जाता है बार बार पहले इधर आओ फिर बात करो। यहां आने का मतलब क्या है, मैं शांत स्वरूप हूं। इसकी प्रोग्रामिंग मैं करते रहूंगा तो जो नेगेटिव लोड है वो खुद ही कम होता जाएगा। लास्ट फैक्टर है HRR, हैप्पीनेस। हर दिन अपने में हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करो, खुशी मेरे हाथ में है। अपनी कंप्यूटर में चॉइस डाल दो, आज के दिन मैं खुश रहूंगा, आज के दिन खुश रहूंगा, फिर जो कुछ भी होगा वो उसका असर कम होगा। आर रेजिलेंस, थर्ड आर रिसोर्सेस। हमें रिसोर्सेस क्रिएट करना पड़ते हैं, कोई रिसोर्सेस देता नहीं है, हमें खुद के रिसोर्सेस खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। अभी पेपर में आया था IAS एग्जाम में, एक रिक्शा ड्राइवर के लड़के ने पास किया, रिसोर्स कुछ नहीं था पर खुद का रिसोर्स क्रिएट करके उसने एग्जाम पास किया। तो रिसोर्सेस को कोई देता नहीं है, हमें खुद को क्रिएट करना पड़ता है। कभी भी कंफ्लिक्ट आए, प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को न देखकर इश्यू को देखें, व्हाट इज द इश्यू, व्हाट इज द सॉल्यूशन। पहले से प्रिपेयर रहें, रैशनल रहें। इसीलिए हमेशा कहता हूं माइंड में आइस फैक्ट्री बना के रख दो, आइस फैक्ट्री यहां, शुगर फैक्ट्री यहां और आयरन फैक्ट्री यहां। आइस फैक्ट्री का अर्थ है कूल, काम, कॉन्फिडेंट। हमेशा कूल रहें, काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें। शुगर फैक्ट्री का अर्थ है जिससे भी बात करें रिएक्ट ना करें, एक्ट करें। लव पावर शक्ति अपने अंदर रहे कि दूसरे की नेगेटिविटी का भी असर मेरे ऊपर ना आए। साइकोलॉजिकली हर इमोशन न्यूट्रल रहता है, कोई इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हर इमोशन न्यूट्रल है। पर जब हम उसको टच करते हैं अपने अनुसार वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अभी की सबसे वन ऑफ द पावरफुल लेडी 15 साल अंदर रही, जेल इम्प्रिजन थी घर में ही, फिर भी जब बाहर आई 15 साल के बाद 1991 में नोबेल प्राइज मिला, अभी नोबेल लेक्चर देने गई और इलेक्ट हुई पार्लियामेंट के लिए। उसके बाद भी उसने कहा मैंने अपने अंदर 15 साल अपने को तैयारी करती रही, 15 साल बाहर नहीं आई, 15 साल अपने को तैयार करती रही और एक पावरफुल लीडर की तरह बाहर आई। सब कुछ नेगेटिव था, 100% नेगेटिव था, फिर भी उसने अपने को मेंटली इतना स्ट्रांग किया और बाहर आकर वन ऑफ द पावरफुल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। लाइफ एक बीच की तरह है, देयर इज नो एंड नो बिगिनिंग, हम सब बीच में चल रहे हैं। कुछ अच्छी यादें हमें एक लहर की तरह हमें टच करती है, वेव की तरह टच करती है, उन यादों के सहारे हम चलते जाते हैं। एक दूसरा बहुत अच्छा कहा, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जो आपको कहता है कि तुम कितने अच्छे हो इस दुनिया में। अगर कोई हमें कहे तुम कितने अच्छे हो इस दुनिया में तो हमारे वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। लास्ट स्टोरी है, पावरफुल स्टोरी है, मैसेज है टॉपिक का। एक फार्मर खेत पर काम कर रहा है, उसकी घड़ी खेत में गिर गई। ये घड़ी टिक टिक आवाज करती थी, किसी ने गिफ्ट दी थी, उसको बड़ा अच्छा लगता था। घड़ी को ढूंढा, नहीं मिली। लड़के खेल रहे थे, बोला ढूंढो मैं प्राइज दूंगा। लड़कों ने भी ढूंढा, नहीं मिली। घर आया, लड़के को बोला मेरी घड़ी गिर गई। लड़का गया खेत में, 2 मिनट बाद घड़ी को लेके आ गया। फादर ने कहा क्या किया तूने? लड़के ने कहा मैं साइलेंटली बैठ गया, सुनने लगा टिक टिक कहां से आ रही है, और वहां जाकर पहुंचकर घड़ी को ले आया। ये टिक टिक सुनना ही मेडिटेशन है, उस साइलेंट में बैठना ही मेडिटेशन है। हर दिन अगर हम 1 मिनट भी साइलेंट में बैठकर अपनी आत्मा को, अपने हार्ट बीट को सुनते हैं, ये बताती है कि तुझे आज क्या करना है, पहले से ही सिग्नल दे देगी कि आज क्या करना है। अगर हम उसको सुनेंगे, और उसको सुनना ही मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन मीन्स लिसनिंग। लास्ट सॉन्ग खड़े होके खत्म करते हैं, मितवा मितवा वाला बजा देते हैं। खड़े हो जाएं, ये पावरफुल गीत है, अपने अंदर उसको जागृत कर देना। हाँ बजा दीजिए, हाँ बजाइए बजाइए, 3 मिनट है अपने पास, बस शुरू हो जाए। हाँ अब थोड़ा साइलेंस में एक मिनट
आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो थक न तेरा ये तन हो आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले तू मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना अंबर है रे वाजा रे
चलने दो अच्छा अभी दो मिनट हो रहे हैं
इनको ब्रेक नहीं देना जो सपना है तुम्हारा सपना वो ही हमारा है जीवन में
हाँ चल हम लिए आशा के दिए नैनन में दिए हमारी आशाओं के कभी बुझ न पाए
कभी आंधियां जो आके वो बुझाए
ओ मितवा सुन मितवा मुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा मुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना नंबर है रे बाजा रे
खड़े रहें अभी और आपकी जितनी कैलोरी बर्न होगी उतना लंच अच्छा खाएंगे इसीलिए मीरा बहन कह रही है अच्छी कराओ क्योंकि खाना अच्छा बनाया शायद मीनू मुझे मालूम नहीं है बाकी बर्न होगी
आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले Thank you.
को संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो ये कैसे खिले हैं। हो तकदीरों को जोड़ दे सी, इन तकदीरों को जोड़ दे सी। कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले, हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरी दिल की दुआ है। हे सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरी दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहा है इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। हो इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा। खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
थैंक यू, बाय, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आगे बढ़ते जाएं, मूव करते जाएं और लाइट बनकर उड़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आए उसको प्रॉब्लम को न देखकर सॉल्यूशन को देखें। मैं आदरणीय मीरा बहन और उनकी टीम को भी बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ।